الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 22. مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چودہ سو 1438 ہجری کے شعبان المعظم کی آج 20ویں شب ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو خیر و عافیت کے ساتھ رمضان شریف سے ملا دے. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. ماشاءاللہ رمضان المبارک میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سینکڑوں یا ہزاروں اعتکاف کریں گے انشاءاللہ پورے مہینے کا، آنا جانا بھی رہے گا. رمضان ایکسپریس تو اطلاع ملی ہے کہ اس کی سیٹیں پوری ہو گئی ہیں جو مرکز الاولیاء سے چلنے والی ہے خصوصی، تو مزید بوگیاں بھی یا سیٹیں کروانے کی بھی ترکیب کہہ رہے تھے کہ ہیں. اس کے علاوہ اعتکاف ایکسپریس جو کہ گلزار طیبہ سے چلنی تھی اور باغ مدینہ ایکسپریس کشمیر سے چلنی تھی، یہ خصوصی ٹرین ہے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے. انشاءاللہ یہاں اللہ کرے گا تو چاند رات تک پہنچنے کی ترکیب ہے ان کی کہ چاند یہاں دیکھیں، یہ میں نے ان سے مدنی التجا کی ہے. اب اس کے علاوہ نجی طور پر باب المدینہ سے، باب الاسلام سے بھی انشاءاللہ شکان رسول تشریف لے آئیں گے. اب آپ حضرات کے کام کا لوڈ بھی کافی عمدہ ہوتا ہے. اب اس میں یہ کہ جذبہ کون سا ہونا چاہیے، جذبہ یہ نہیں کہ مطلب لوگ واہ واہ کریں کہ بڑا پھرتیلا ہے، یا کوئی ذمہ دار شاباش دے دے کہ یار تمہارے کام کی سپیڈ بہت ہے وغیرہ. آپ کو جذبہ، ہم سبھی کو یہ ہونا چاہیے کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. کام کم زیادہ وہ تو اپنے، اگر جو اجیر ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی شرن مسئلہ ہے کہ وہ درمیانہ وہ کام کریں، کم کریں گے تو بھی کٹوتی کروانی پڑے گی، زیادہ کریں تو خیر ان کی مرضی ہے. جو معتدل کام ہوتا ہے درمیانہ عرف کے مطابق، اتنی رفتار اس کو کرنی ہوتی ہے کام. تو اب یہ کہ اگر یہ اللہ کی رضا پر نظر رکھیں گے اور جو کام کریں گے وہ خوف خدا کی روشنی میں کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی، ورنہ ہم تو دیکھتے نہیں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا جو فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی جو چاہے کریں، ان کو بھی اللہ کا خوف پیش نظر رکھنا ہوگا کہ وہ بھی اگر اس میں ایسی کوتاہی کریں گے جس سے دین کے کام کو نقصان ہوتا ہے یا دعوت اسلامی کے مدنی مالیات کو نقصان ہوتا ہے، یعنی پیسے ضائع ہوتے ہیں ایسا نقصان ہوتا ہے، تو بھی آخرت میں ان کی بھی گرفت ہے. اب حالت یہ کہ میں تو خیر سمجھا کہ بوڑھا ہو گیا، لیکن خدا جانے کہ سمجھ آتی کیوں نہیں ہے بہت سے سہ بھائیوں کو. समझ से बाहर है। ज़ाहिर है कि मैंने तो मेरी तरबियत ये कह सकते हैं किसी ने नहीं की। मेरे बारे में ये कहा जा सकता है कि जाए उस्ताद खाली है, मेरा कोई उस्ताद इन मामलात में नहीं है। तो कुदरत की बस एक जहन है। अब समझा कर मैं यूं कह सकता हूं जैसे मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन मैं अपनी समझाने में कामयाबी की मंजिल नहीं पा सका। इसी हफ्ते की बात है, अब 3-4 दिन हुए मैंने इनको दिखाया दिन दिहाड़े, बत्ती नहीं, इतना बड़ा बत्ता, ये खुली धूप में इतना बड़ा बत्ता जल रहा है, तो खुदा जाने अंदर क्या हो रहा होगा। वो तो हाल मस्तूर, वो तो पर्दे में ही था, बाहर मैंने ये बत्ता दिखाया। क्या अल्लाह ताला को मरकर क्या जवाब देंगे? मुझे हाँ बोलते हैं, लब्बैक या मुर्शिद नूर के बरसात हो, खाली बोल के मुझे कुछ कर देते हैं, ये समझ देंगे मैं मुतमइन हो जाता हूँ। मुतमइन क्या हूँ, तो मुझे वो सब सब सलामत शेर बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं, इस तरह के पैगाम आ जाते हैं, आप बेफिक्र हो जाओ हम सब कर लेंगे। मैं और क्या कह सकता हूँ, मैं तो सब ऐसा नहीं करते, लेकिन बहरहाल वो समझते होंगे आप, किसी को इतनी परवाह नहीं है। नहीं, जब तक खौफे खुदा से दिल थोड़े की तरह नहीं हो जाएगा ना, आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, मैं जब मुतमईन नहीं होता, मैं खुश नहीं होता इन बातों से, तो आप बताइए कि हम सरासर अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे और फिर हम बोलेंगे हम सीधे जन्नत में चले जाएं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, उसकी रहमत पर नजर है, लेकिन हम यार इतनी सरासर अंधी चलाए। मेरे पास कोई मशीन नहीं है, वरना मैं आपका दिल निकाल के दिखा देता कि इसमें कहां कहां खौफे खुदा के मतलब दाग और जलापा है, जलन है, आपको पता ही नहीं है। अपनी तनख्वाहों से वास्ता है, गुजारे से वास्ता है। जनरल बात करो, सबको नहीं कह रहा, यानी जिसकी नौकरी ना भी हो ना और जिसके बस में हो, यानी जिसको यूं लगे कि जन्ने गालिब है कि ये लोग मान जाएंगे, इस बुराई को खत्म करेंगे, उस पर वाजिब हो जाएगा कि इसको समझाए ये क्या कर रहे हो। देखता रहता हूं, बोल के थक गया हूं। नहीं मतलब इतनी जहन बन नहीं रहा। अब जैसे ये है ना, मैंने अभी बात करने लगे तो मैंने बंद कर दिया था, इस तरह भाई ने आकर खोला, लेकिन आमतौर पर ये शुरू से चल रहा होता है। इसके सेल जो है वो घरे खर्च हो रहे होते हैं, ऐसे कैमरों के सेल तो पता नहीं, सेल बल्ब जल रहे होते हैं, देखिए मतलब नहीं तवज्जो नहीं होती या परवाह नहीं होती, जहन नहीं बनता। ये मतलब एक बूढ़ा आदमी जब बार बार बोलता तो फिर उसकी इतनी अहमियत नहीं रहती। या ये होता है कि जब ये आने वाला होता ना, जैसे इंस्पेक्शन जब होता ना, उस वक्त बड़ी तरकीब बनती है। हम सफीने मदीना में गए थे ना, तो जब वो सफीना जब जद्दा शरीफ आने वाला था, 7-8 दिन तक तो इन्होंने जो करना था वो किया शिप वालों ने, फिर जब 7-8 तो उसी वक्त मुझे पता चला मतलब, तो वो कारपेट निकाले जा रहे हैं, बिछाए जा रहे हैं, सामान सलीके से वो सब सफाइयां हो रही हैं, तो क्या है ये। तो फिर वो इन्हीं लोगों ने बताया कि यार वो आएंगे इन लोगों के अफसर, अगर ये कुछ भी आगे पीछे हुआ या गड़बड़ हुई ना, तो ये लोग यार जुर्माने करते हैं, ये करते हैं, यूं मतलब ये सब होता है। जैसे कि मैं किसी को किसी काम से मना करता हूं ना, तो क्या करते हैं, मेरे सामने बचते हैं, बाकी ये वही कर रहे होते हैं। इसका तो मुझे 100 मरतबा तजर्बा है। जैसे बत्ती पंखे पर मैं चीरता हूं पता है, तो बारहा मैंने खुद नोट किया कि मैं जब जाता हूं तो ठकाठक बत्तियां पंखे, और अगर मैं यूं अचानक छापा मारू ना, आप समझ जाए कि जो होना हो वो हो रहा हो, तो इसका क्या हल निकालें। अब आप ही हल निकालें, अब मेरे हाथ में तो है ही नहीं कि मैं सबको भर भर के खौफे खुदा के जाम तकसीम करूं। मैं खुद पीना चाहता हूं, कैसा नशा चढ़ जाए खौफे खुदा और इश्के मुस्तफा का, के बस अपना होश ना रहे।
क्या मदनी अमले के इस्लामी भाई मोतकिफीन का खाना खा सकते हैं?
जैसे हम मोतकिफीन के नाम पर ये सारा मदनी अतियात रमजान शरीफ के लिए करते हैं, सहरी इफ्तारी आमतौर पर मोतकिफीन का होता है, लेकिन जो मोतकिफीन से मिलने के लिए आ जाता है कोई इनका दोस्त या अजीज, चलो वो खा ले। अखलाकी तौर पर भी गौर करना चाहिए। मैंने पिछली बार काफी जोर लगाकर अर्ज किया था कि जो स्टाफ है हमारा मदनी अमला, ये सारा साल तो घर पे ही खाता है ना, तो इनके लिए हम लोगों से मांगते नहीं है कि हम मत हमारे अमले को खिलाएंगे, हम ये इनके लिए, तो आप किसी को मेरी तरफ से इजाजत नहीं है सहरी इफ्तारी में, आप अपना जिस तरह हमेशा खाते हैं अपना करें, खाली खाएं और चले जाएं, खाने के लिए आ जाएं और खाकर निकल जाएं, ये इसके लिए हम नहीं करते। अब अखलाकी तौर पर भी तो सोचे ना यार, कि हमने आपका इजारा किया हुआ है, आपको रकम देते हैं, आप उसमें से खाएंगे ना आप? हाँ मतलब ये एक इस्तिस्ना हमने किया हुआ है कि बाद स्थानीय भाइयों को ये ऐलान किया हुआ है कि जिनको नौकरी या दुकानदारी या जो कामकाज होते हैं, जो पूरा माह एहतिकाफ नहीं कर सकते या 10 दिन नहीं कर सकते, तो वो ऐसा करें कि नौकरी पर जाएं, फिर मस्जिद में आ जाएं, मोतकिफिन के साथ वक्त गुजारें, सीखें सिखाएं, काम करें, खिदमत करें इनकी, फिर नौकरी पर चले जाएं, घर नहीं जाना है, तो ऐसों को वहां खाना चाहिए, हर्ज नहीं है, समझ में भी आ जाएगा सबकी। लेकिन मदनी अमले को जिनकी तनख्वाहें, इसके लिए हम अगर जिसने मदनी अतियात दिए हैं हम उसको भी कहेंगे ना कि भाई हमारे ये 2000 आदमी है या 1200 हमारे स्नेह भाई काम करते हैं, भाई आप जो दे रहे ना हम इसमें से ये भी खाएंगे, तो शायद वो भी अटकेगा, मुरब्बत में हाँ बोल देगा, दूसरी बार शायद देने में कतराएगा। हम समझे थे यहाँ तो लोग एहतिकाफ करते हैं अल्लाह के नेक बंदे, ये लोग खाएंगे, तो अखलाकी तौर पर भी ये नहीं खाना चाहिए। अब अगर देख आई मुतकिफिन के लिए या मदनी जो तरबियत देने के लिए, अब उनमें से कोई थैली भरे शुरू में बोटियां भी डाले और ये पता चले गए ये छुपाई जा रही हैं, जो पैसे दे रहा हो वो देख ले, आप ईमानदारी से बताएं उस पर गुजरे क्या, तो इसलिए मेहरबानी करके एहतियात फरमाएं और बगैर मजबूरी के, और मजबूरी मैंने अर्ज कर दी आपको कि आप यही अगर मुतकिफिन की खिदमत के लिए, इबादत के लिए, दीन सीखने के लिए रुकते हैं और ड्यूटी के टाइम पर ड्यूटी देते हैं, बाकी बक्तियां गुजारते हैं, भले खाए पिए, आपको किसने मना किया? अखलाकी तौर पर सोचे ना आप। मैं देखो हुक्म शरई नहीं लगा रहा, वो मुफ्ती साहब फरमाएंगे, लेकिन आखिर को अखलाकी चीज भी है कि नहीं? बहरहाल मेरी तरफ से किसी को भी खाने की इजाजत नहीं है, ना एहतिकाफ में, ना आइंदा तरबियती इस्तेमाल के लिए जो खाने पकते हैं उसके लिए, जबकि ये लंगर रजविया जो है हम जिस लिए मांगते हैं वो सबको अंदाजा होगा, और हम मतलब आपके लिए झोली फैलाते हैं कि चलो जो दीन सीखते हैं वो आए खाएं इस बाने यार। हालांकि दुनियावी तौर पर जो ट्रेनिंग लेते हैं कॉलेज में स्कूल में, वो क्या इस तरंग को कौन खिलाएगा, अपने पल्ले से कितना खर्च करके सीखते हैं, वो दीन सिखाने के लिए ये सब फैसिलिटीज देनी पड़ती है, चलो इसी बाने सीखे तो सही, शरण इजाजत जो होती है उसके तहत हम लोग ये करते हैं। मक्के मदीने में अल्लाह आपको हाजिरी नसीब करे तो वहां भी आपको पल्ले ही से खाना होगा, और खाएंगे आका खिलाएंगे इंशाल्लाह, हमारी जेब से ही आका खिलाएंगे हमें, हम जेब में हाथ डालेंगे उन्हीं की तकसीम से हिस्सा मिला हुआ है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
ये बताइए उठाएं जब, चाहे सहरी के बाद उठाएं या इफ्तार के बाद उठाएं, इशा से पहले, ये उठाकर थाल ले कहां जाएं?
कोल्ड स्टोरेज, और जो बचा हुआ खाना जो है ना ये भी गर्म करके, गर्म अच्छी तरह होगा ना तो मिक्स करके डाल दिया जाए। मुतकिफिन क्यों नहीं खाएंगे ये भी बोलते, तलबा नहीं खाते, तलबा क्यों नहीं खाएंगे? मैं तो पहले भी कहता मैं इनको पत्थर खिला दूं यार, खिलाने वाला चाहिए ना, क्यों नहीं खाएंगे? एक तो मुफ्त खिलाएं फिर भी नखरे कि हम ये नहीं खाना, तो कोई मुतकिफ क्यों बोलेगा नहीं खाऊंगा?
बचे हुए खाने को किस तरह अगले रोज के लिए पकाकर खिलाया जा सकता है, ये हमारे पकाने वाले मौजूद हैं।
इनको बेचारों को शरीद बनाना ही नहीं आता जो मैं समझ सका हूं। हालांकि शरीद कितना यार टेस्टी होता है, वरना ये रोटियों के टुकड़े, क्योंकि खाने वालों में एक तादाद होती है जिनको समझ नहीं आती, रोटियों के टुकड़े पड़े होते हैं लेकिन फ्रेश रोटी से थोड़ा सा तोड़ लेंगे और टुकड़े 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 बचते रहते हैं, तो इस तरह ये टुकड़े जो हैं जितने टुकड़े हैं एक देख के दो देख के उनको उनका शरीर बना लिया जाए और शरीर खिला दिया जाए, थोड़ों को शरीर मिलेगा, बाकियों को जो और खाना बनाए वो खा लेंगे। एहतिकाब में वैसे ही मतलब भीड़ भाड़ लगी होती है, खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे, शरीर बनाने का तरीका बताना चाहिए। बचा हुआ शोरबा इसमें इस्तेमाल हो सकता है, बचा हुआ सालन इस्तेमाल हो सकता है, नया शोरबा बनाया जा सकता है।
शरीर बना तो लिया जाता है उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करवाने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना।
रोटी डाली जा सकती है पुलाव में, जब तक आप बोलो नहीं ना कि ये रोटी है ये बोटी लगेगी, मैं सही बोलता हूँ आपको, मगर ये हवा में तेरी पता चल जाएगा ये बासी रोटी है ये बासी चावल है। जो कोल्ड स्टोरेज पर भी कोई समझदार आदमी होना चाहिए, जो इसका ढोल छीन लो ये बजाता ना रहे, सुनिए नहीं वाकई पुलाव में रोटी हमने खाई है यार, अपने को तो पता होता है ना, मतलब हर एक को थोड़ी समझ पड़ती है खाने से मतलब है। पानी वाला पुलाव खिलाया ही था ना यार, पानी में पका हुआ, तेल का एक कतरा भी नहीं, खाया लोगों ने मजे से, अभी तक जिन्होंने खाया उनको समझ नहीं आई होगी कि ये पानी का था। पानी का पकाने का नुस्खा मुझे मालूम है किस तरह, ये पुलाव पुलाव में सालन में सब्जी तेल कुछ भी नहीं, नहीं जो मरीज होते हैं जैसे, वो नुस्खा है मेरे पास, वो तेल जैसा टेस्ट नहीं बनेगा लेकिन पानी का बन जाता है। और ये अवाम जो हमारी मोतकिफीन आते हैं ये इनको तो बेचारों को खैर इतनी नहीं समझ आती, हमारी कोशिश ये होती है कि ये बीमार न पड़े। जो एहतिकाब में एक तो आराम पूरा नहीं मिलता, फिर हर वक्त रश, नींद नहीं आती बाजों को भीड़ में, और जदवल चेंज हो जाता है, पहले रातों को जागते सोते थे अब रातों को जागना होता है, किसी हद तक जो सोते हैं उनको भी पुरसुकून नींद नहीं आती होगी, माइक चल रहे होते हैं, तो गिजा के तौर पर भी हमको इनके साथ ताउन ये करना चाहिए कि इनको कम से कम मतलब इनके मैदे को मेहनत करनी पड़े। तेल ज्यादा होगा, बोटियां सख्त होंगी तो सारे मेहनत ज्यादा पड़ेगी, ये बेचारे पड़ेंगे बीमार, ये बुखार और पेट में मतलब गड़बड़ हो जाती है, एक तादाद है जो बेचारे बीमार हो जाते। फिर रोजा, रोजे का भी जहर सारा साल तो हर कोई नहीं रखता होता आमतौर पर, तो इसलिए वो गिजा में भी आपको वो एहतियात करनी है। पानी का तो बहुत मुश्किल है कि देगे पका पाए, अलबत्ता उबले हुए चावल जो है ना, जैसे कि दाल पानी में पकती है, हमने जमाने से अपने घर में देखा है दाल पानी ही में पकती है, चावल उबालना पानी में कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सारे घरों में उबाल कर पानी में ही चावल दिए जाते हैं। तो अगर ये मेहरबानी हो सकती हो कि चावल और दाल इसमें तेल ना डाला जाए, इनका वजन भी कम होगा, पेट भी सेट हो जाएगा, मोतकिफीन का फायदा होगा इनका। इस तरह गोश्त की चर्बी जो है ना, गोश्त के अंदर चर्बी तो होती है, वो तेल का काम कर रही होती है, तो अगर हम बगैर तेल के अगर कोरमा पका सकते हैं, इसके वही ने कई तरह के इसमें हरे मसाले जो पीस कर इसका हलवा बनाकर इसमें डालना पड़ेगा, कुछ आलू भी पीस के डाल दिए जाएं, दही डाली जाए इसमें, इंशाल्लाह समझ ही नहीं आएगी कि ये इस गोश्त में तेल नहीं, अवाम को क्या पता, हमने तेल नहीं डाला तो भी बोलेंगे हाँ अच्छा है तेल नहीं डाला तो, लेकिन कोई समझाएगा ना टेस्ट का तो समझ पड़ेगी। तो ये असल है अवामी तहरीक, ये एक मतलब हर तरह का आदमी होता है इसमें, वरना यह कि मैं चाहता हूं कि इनकी सेहतें अच्छी रहें ताकि इनका एहतिकाब भी अच्छा हो, इबादत में दिल भी लगे, वुजू भी देर तक इनका कायम रहे, वजन भी इनका कम हो ताकि आगे भी इबादत कर सके। अरे और अपने को पैसे का, पैसे तो दुनिया दे रही है ना इनके नाम पर, मोतकिफ इनके नाम पर लाखों रुपए आ रहे हैं, खाओ पियो मौज करो, तेल भर भर के पियो, भेज देंगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास कुछ हुआ तो, दिल के डॉक्टरों के पास। इसलिए मैं फायदे की बात कर रहा हूं, इसमें आप देख लें कि तेल अगर कम डालने से गुजारा हो ना, जैसे पुलाव में तेल कम डालते हैं तो इतना टेस्टी ना भी बने ना, क्योंकि देग और पतीले में फर्क होता है, ऊपर रायता डाल डाल के आप खिलाएं तो वो गुजारा हो जाएगा। अब पकाने में नींबू काट के डालें टुकड़े टुकड़े नींबू के, दही ऊपर से डालें, ऊपर से दूध भी डाला जा सकता है चावल की देख जब पक गई ऊपर दूध डाल दें और ढक दें इसको दम पे रख दें, चावल का इंशाल्लाह टेस्ट जो है वो और बेहतर बन जाएगा। किसी तरह भी हमारी कौम जो है हमारे आशिकान रसूल जो है ये ज्यादा से ज्यादा सेहतमंद रहकर इबादत कर सके, हमको ये अंदाज इख्तियार करना है, इसमें भी सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और पैसों की बचत अपनी जगह पर होगी, लेकिन जरा दही भी मुफ्त नहीं आता, दही भी महंगा, दूध भी मुफ्त नहीं आता वो भी महंगा है, तो तेल की बचत हो ये जरूरी नहीं है। इस तरह गर्म मसाला, गर्म मसाला हमारे यहाँ तो फिर नॉर्मल होता है, जैसे शादियों का खाना जो होता है ना वो इसलिए तनकीद नहीं करते शादी के खानों पर कि उसमें गर्म मसाले की मार होती है और तेल घी खूब दिल खोल के डाला जाता है तो वो टेस्टी बन जाता है, इसलिए वो तनकीद नहीं करते। अच्छा गर्म ये सख्त गोश्त बल्कि हाथी का गोश्त गलाने के भी फार्मूले ये किचन वालों को बहुत पता होते हैं, तो इनको पकाना भी कोई इतने इनके लिए कोई मसला नहीं होता, ये सोडा डाल देते हैं और पता नहीं क्या क्या डालकर पकाने की कई चीजें आती हैं जिनसे ये गोश्त गल जाता है। तो बहरहाल ये कि शादी का खाना हाल का खाना और इस खाने की हमको रेस भी नहीं करनी, ना शादियों वाले खाने या खिलाने, वरना ये क्लिनिक तो क्या पूरी होगी, इमरजेंसी नाफिस हो जाएगी, ये खतरा होगा। अगर डेली कोई शादी का खाना खाए ना और वो अगर सेहतमंद रह जाए तो उसको वो तंदुरुस्ती का अवार्ड देना चाहिए, एक महीना दोनों टाइम को जो शादी के हाल में खाना पकता है और शीरमाल और कोरमे कोई खाए और तंदुरुस्त रहकर दिखाए और बोले मेरे न सीने में जलन होती है न मेरे पेट में गटर गुए है, मैं बिल्कुल हेल्थी हूं, वो कभी भी नहीं रहेगा हेल्थी। नामुमकिन एहतियातन नहीं कह रहा मैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि वो सेहतमंद रहे।
आप अमीले सुन्नत को ये बयान करें कि आप खाना निकालते वक्त क्या एहतियात करते हैं।
पहले हम मिक्स करते हैं खाने को देख को पूरी, उसके बाद एहतियात से कोशिश होती है कि बराबर सा खाना थालों में डाला जाए।
बिरयानी को मिक्स कर देते हैं?
जी जी, पहले कबीर से मिक्स करते हैं, फिर हमारे पास प्लेटें होती हैं, उस प्लेट से भी तकरीबन 80% मिक्स कर लेते हैं, इसमें रश इतना होता है लोगों का हजूम, फिर एक एहतिकाफ के दौरान ऐसा होता है कि नमाज खत्म होते ही एक लाइन लग जाती है एहतिकाफ वालों की, खाना लेने वालों की, उस वक्त ये होता है कि हम एक तो चावल बहुत गर्म होती है, चावल गर्म होता है, फिर हाथ से ही उसको मिक्स कर थालों में निकालते हैं।
हाथ से मिक्स करते गर्म चावल?
हाथ से मुराद प्लेट हाथ में होती है।
अच्छा
जी जी, और फिर थालों में कोशिश होती है कि बराबर सी बोटियां और बराबर सही आलू जाए।
जो शादियों में जो देगें होती हैं बिरयानी उसमें मिक्स करके खिलाते हैं?
जी।
अच्छा,
उसमें ही मिक्स होता है।
क्यों मेरे को याद पड़ता है, जो मैं अब तो शादी हाल में जमाने से कुछ गया नहीं हूं, कि मसाला निकालकर ऊपर सफेद चावल डालते हैं, ये जो भी उसी देख के चावल डालते हैं और खाने वाले खुद मिक्स करते हैं।
बाबा जान वक्त ज्यादा लगता है कि जैसे नीचे
नहीं, मतलब शादियों में क्या तरीका होता है?
शादियों में जो तरीका आपने बताया ऐसा ही होता है कि
नहीं, मगर अभी आपने मिक्स कर दिया था।
नहीं, मिक्स से मुराद वो नहीं कि पूरी देख को मिक्स करते हैं, वो नीचे ऊपर से चावल नीचे डालते रहते हैं मसाले के साथ मिलाकर फिर डिशों में डालते हैं, शादियों में अक्सर देखा है। अगर हम फैजान मदीना में यहां पर पूरी देख को मिक्स करते हैं।
मगर मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो अर्ज कर दूं, समझाने के बावजूद ही देखा है मैंने कि कोरे कोरे चावल किसी थाल में, किसी थाल में मसाला, किसी थाल में आलू बोटी नहीं, इस तरह का देखा है मैंने। अब जब रमजान हाल में मेरे सामने तो बहुत एहतियात होती होगी कि, और मेरे करीब जो थाल आते होंगे वो तो खुसूसी शायद एहतियात से लाए जाते होंगे कि ये कहीं देख ना ले, तो जब यहां यूं हो जाता है तो पीछे वालों को तो पता नहीं, खुदा जाने उनके साथ क्या सुलूक होता हो, अल्लाह बेहतर जाने। हर वक्त नहीं होता लेकिन ऐसा भी होता है।
मगर यहाँ तेल वाली बिरयानी कम बनती है,
ये तेल वाली बिरयानी में होता है कि सादे चावल ऊपर होते हैं और मसाले नीचे होते हैं। खाने मजरे में सिंधी बिरयानी टाइप की जो होती है ना, जैसे पुलाव होता है मिक्स, यहाँ मिक्स खाना बनता, मिक्स चावल बनते हैं, वो पहले से ही मसाला वगैरह सब उसमें मिला हुआ होता है।
अब वो तो इसको शायद बिरयानी नहीं कहते, बिरयानी जो ऊपर चावल की तेह होती है ना,
हाँ तेह वाली,
उसी को बिरयानी में रख ले कहते हैं। बाकी ये तो आप जो बता रहे हैं पुलाव होता है,
पुलाव भी होता है, सिंधी बिरयानी कहते हैं। अच्छा। जो मिक्स होती है
जी,
जो तेह वाली बिरयानी होती है इसे कहते हैं बम्बई बिरयानी।
बम्बई बिरयानी
जी जी।
अब देखो मदनी बिरयानी कब बनती है।
और अक्सर मुमन देगों में भी माल किसी में बोटियां कम होती हैं, मतलब जो पकाने का हिसाब होता है उसमें किसी में बोटियां कम है, आलू कम है, तो उसमें भी थोड़ी आजमाइश होती है, मतलब फिर वो वैसे ही सारे चावल देना देते हैं हम लोग।
और जल्दी में आजमाइश होती है, एक कोशिश यही की जाए कि थाल में ये अंदाजा हो कि कितने आलू डालने, कितनी बोटी डालनी है, ये भरने वाले को अंदाजा होना चाहिए।
ये कोशिश यही होती है, कोशिश यही होती है, मगर आवाम का हजूम और रश और लेने वालों की जल्दबाजी, पहले मुझे दे दो मैं खड़ा हूँ, ऐसा होता है। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जहन के लोग होते हैं, हर किसी को, किसी को समझ आ जाती है, किसी को नहीं आती,
अल्लाह
कोई कर। कोई सबर कर जाता है, कोई जल्दबाजी में होता है, तो वो ऐसा ही करता है।
दोबारा लेकर वो थाल में तो ये एहतियातें करनी है, जब वो देग में जो अधूरे थाल होते हैं आपके पास, वो तो आते नहीं होंगे शायद, इसमें और डाल दो,
ऐसा भी होता है आते हैं।
तो वो तो दोबारा देग में डालने होते हैं, गर्म करके फिर मिक्स करके निकालने होते
हैं। वो जो थाल बच जाते हैं वो खादमीन उठाते हैं, हम खाना भर के बांटते हैं सिर्फ, उसके बाद जो थाल बच जाते हैं, जो खाना बच जाता है वो खादमीन सब थाल जमा करते हैं
जी।
जो एक्स्ट्रा खादमीन रमजान में रखे जाते हैं जारे पे, वो लोग जमा करते हैं, वो फिर लेकर जाते हैं जहाँ थाल धोने होते हैं वहां जमा करते हैं बचा हुआ खाना और खाते।
बापा इसमें ऐसा भी होता है कि बाज दफा खाना जो थाल में हम देते हैं तो दो तीन अफराद होते हैं वो लेके चले जाते खाते हैं, बाज दफा बाज थाल में पांच अफराद खा रहे होते हैं, अब खाना जो निकालते हैं उस वजह से भी जो है थालों में खाना बच जाता है।
जी जी, वो इतना बड़ा एहतिकाफ जो है ना, अब इसमें मदनी अमला भी हमारे पास इतना होना चाहिए और मजलिस के स्थानीय भाइयों की तरबियत भी इतनी होनी चाहिए कि वो दो तीन को बैठने ही ना देना, हमारी पांच या सात की जो लिमिट है उतने ही ढूंढ ढांड के बिठा है। तो मदीना के हुरूफ पांच है,
मरहबा
पंचतन के पांच,
माशाल्लाह
जज़ाकअल्लाह। बहुत पिछले दिन आपने फरमाया था उस पर अमल से बहुत फायदा हुआ था कि हम थाल में खाना कम निकालते हैं फिर बाल्टी लेकर घूमते हैं, इससे बड़ा फायदा हुआ था कि हमारे थालों में खाना बहुत कम बच रहा था। इस्लाम भी इंशाल्लाह इसी पर अमल होगा
इंशाल्लाह। हिफाजती उमूर सुभानअल्लाह माशा
क्या बात,
मरहबा। नहीं इनकी भी कुर्बानी है बिचारों की, इनको भी ऐसा कौम झाड़ती होगी, चेक करते हुए बार वो बातों नहीं होते ना, बोल के हम कोई दहशतगर्द नहीं है, हाँ बम छुपा हुआ निकाल ले, ऐसे ऐसे बोलते होंगे, तो इनकी इनका भी इम्तिहान होता होगा, इनके सब्र का, आपका इम्तिहान होता है, सही है सब, ऐसे ऐसे खर्दे मंगाते होंगे। तो हवाई जहाज में नहीं करते ये लोग, हवाई जहाज में बहुत शराफत से बड़े बड़े लोग जो चेक करवाते हैं, यहाँ आकर शायद ये अड़ी करते होंगे, लेकिन हर एक का अपना अपना मनसब है, ये भले अड़ी करे, आपको कुफले मदीना लगाए रहना है आपने। अच्छा रियायत भी नहीं करनी, रियायत बिल्कुल नहीं करनी, जो आपको काम मिला है करना उसी तरह है, तो बोलना कुछ नहीं है। इसकी बहुत पुरानी मिसाल मेरे पास एक मैं देता हूं कभी कभी, बहुत पहले की बात है, आशूरे का दिन था, मैं अपने पुराना घर गऊ गली में था, दावत इस्लामी के पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो उस वक्त रोड पर चलते थे तो वो कुछ टकरा गए आपस में और भगदड़ मची और पथरा और फायरिंग, अब पहले आजकल की तरह फायरिंग भी नहीं ऐसी कोई पावरफुल, तो जैसे कि हमारे घर के पास चौक था एक, मतलब गलियों का चौक, वो खड़े होकर इतनी सी बंदूकड़ी से वो ठा ठा करेगा तो गोली भी आधे रास्ते में गिरती होगी, पहुंचती नहीं होगी किसी तरह। तो इसमें पुलिस की टीम आई, एक इसमें सादा फेस में था, तो ये टीम आई तो ये जो हंगामा करने वाले थे वो भागे और दूर जाकर पुलिस की टीम पर एक ने पत्थर मारा, इतना बड़ा वाकई इतना बड़ा होगा पत्थर फेंका, तो इनमें जो सादा लिबास में था ना उसने इसको यूं बॉल की तरह कैच कर लिया। मैं तो हक्का बक्का रही हूँ कि अल्लाह इतना बड़ा पत्थर इन यारी ऊंची कैच कर लिया, तो इसका निशाना भी ऐसा होगा और जिसने मारा ये गिरा, तो इसने यूं करके यूं डाल दिया साइड पे, मारा नहीं। मेरे को सुझका नहीं पड़ा, फिर मेरे को बाद में पता चला कि किसी ने बताया कि ये SDM था। मैं SDM का नाम ही पहली बार सुना था, फिर पता चला कि ये कोई पुलिस का अफसर होता है। और मेरा जहन बना कि इन लोगों का काम मारना नहीं था, इन लोगों का काम जिंदा पकड़ना था, जो भी मुजरिम थे इनको इनको मारने का ऑर्डर नहीं था। तो इसलिए इसने पत्थर मारा नहीं, बल्कि भले हाथ में नहीं आई ये लोग मगर मारा नहीं इसने कानून। तो इसी तरह जो भी आवाम आएगी आपके साथ, बाज लोग सब नहीं, बाज आपको सलाम भी करते होंगे, इज्जत भी देते होंगे, तो कोई इक्का दुक्का ऐसा खर दिमाग भी आता होगा जो आप लोगों के साथ उलझता होगा और उल्टी सीधी बातें करता होगा, मुंह बिगाड़ता होगा, कोई हो सकता है उल फुल बक भी देता होगा, मगर आपका काम बस वही करना है जो करना है, इनसे उलझना नहीं है। यानी जो आपको प्यार से सलाम करता है उसको जब आप तोहफा नहीं देते, शाबाश नहीं देते, तो उससे लड़ेंगे। इसलिए आपको सिर्फ सब्र करना है, किसी से उलझना नहीं है, आपकी शिकायत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आपने कुछ बोल दिया ना, इसने शिकायत जब करेगा तो ये नहीं बोलेगा कि मैंने गुलदस्ता उठा के मारा तो इसने खाली मुझे फूल ही दिया है, तो वो आपके गुलदस्ते ही की बात करेगा कि इसने जोर से गुलदस्ता मारा तो देखो यूं हुआ नहीं यूं हुआ। तो इसलिए मेहरबानी करके आपने उसने अखलाक का पेकर बनना है कि जो भी आते हैं ये पहले खर दिमाग होते भी हैं, बाद में सेट हो जाते होंगे, बाज पुराने होते हैं, उनको थोड़ा यूं मान होता है कि मेरे को क्यों चेक करें, तो हो सकता है इसलिए वो ऐसा करते हो। तो जो भी करे आपको कुछ नहीं करना। अब जैसे कि मैं हूं, अब आप लोगों में तो एक ऊंचा बैठा हूं ना, मोहब्बत है ना, एयरपोर्ट पर जाता हूं तो मेरे को भी लाइन में लगना पड़ता है, मेरे को भी चेक करते हैं, बाकायदा मेरे हिमा में भी चेक हुए हैं। मैं कभी भी कुछ नहीं बोलता हूं, मैं जो करता है करने दो। मैंने कहा ये मैं कुछ बोलूंगा तो ये चेक करने से बाज नहीं रहेगा, बल्कि कुछ बोल देगा तो फिर इसका मुझे सदमा उठाना पड़ेगा। तो जब चाहो अपने को जो करते करवाए जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि चेक करने के बाद मुझे कहा भी है कि मैं अतारी हूं। अच्छा, कई बार ऐसा हुआ है चेक करने का, वो बोलते हैं सॉरी, दुआ में याद रखना। अच्छा, बाज होते हैं तो आपको हमने देखा है मादनी चैनल पर, ये ज्यादातर पंजाबी होते हैं, मैंने नोट किया, और पंजाबियों में उमूमन ये या रसूल अल्लाह वाले होते हैं, सुन्नी होते हैं, अफसरान ये वो आके मिलते हैं, फूल लगे हुए पता नहीं क्या क्या, तो ये होते हैं आमतौर पर सुन्नी, लेकिन चेक करते हैं ये। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो नहीं भी करते, दूसरा आके बोल देता है जाने दो, तो वो हो सकता है बड़ा होता होगा इनसे, तो वो नहीं चेक करते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी एहतजाज नहीं करता, पंचायत नहीं करता, बोलता कुछ नहीं इनके सामने, ये दिखा दो वो जेब खाली करो। इसमें अपनी इज्जत भी है, आफियत भी है। अगर हम बोलेंगे तो शक पड़ेगा, जैसे आपको भी कोई ज्यादा कुड़कुड़ करेगा तो आपको शक पड़ेगा कि यार इस तरह ये कोई लेकर तो नहीं जा रहा, इसको तो बिल्कुल खंगाल डालो, तो वाकई खंगालना चाहिए। लेकिन वही शरीयत और अखलाक के दायरे में रहकर पूरा ज्यादा चेक करना चाहिए, जो ज्यादा गड़बड़ करे खुदा जाने वो क्या लेकर जा रहा हो। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे, आपकी भी हिफाजत करे, कोई उल्टा सीधा बोल भी दे ना तो सब्र करें, दिल में भी आप ना ले, दुआ दे दें, अल्लाह से कोई दाद दे। इसमें इंशाल्लाह आपको टेंशन कम होगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, वो दिल जलाते रहेंगे तो बनेगा कुछ भी नहीं। वो जफा करते रहे हम वफा करते रहे, अपने अपने फर्ज को दोनों अदा करते रहे।
जब कोई अड़ी करता है ना, रोजे से भी होते हैं, بعد کا نیند نہیں ہوئی ہوتی گھوم جاتی ہے.
گھومنی نہیں چاہیے ہم کو. یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ نظام دین کا ہے. وہ دنیا کے نظام میں گھومتی نہیں ہے. ایئرپورٹ پہ نہیں گھومتے. ایئرپورٹ پہ چیک کرنے والوں کو کبھی میں نے لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا کسی سے. چار دن تک وہ الجھتا ہی نہیں ہے. یہ ہوتا ہوگا یہ نہیں لڑتا. یا آپ بھی کان میں اگر یہ بول دیں نا معاف کیجیے گا معاف کیجیے گا ہماری ذمہ داری ہم تو تنخواہ اسی کی لیتے ہیں. ذرا محبت کی باتیں اگر آپ کر دیں تو شاید وہ ہنس پڑے گا. مگر چیک پورا کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے. ہم کو تو جو آیا اس کو تو بس سنبھالنا ہی ہے جانا نہیں چاہیے پیار محبت سے. لیکن وہ چیک کریں گے بولا آپ بولیں گے نا میری ڈیوٹی ہے میں کیا میری تنخواہ یہی ہے اس لیے معذرت دعا میں یاد رکھنا کرنا اس طرح کر کے انشاءاللہ نہیں غصہ کریں گے. بڑی بات ہے یار یہاں نماز پڑھنے کے لیے لوگ ویسے نہیں آتے مسجدوں میں. یہاں نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگ چیکنگ کرتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے نا دین سے اور مدنی مرکز سے کہ چیک ہو کے بےچارے آتے ہیں. دوسری مسجدوں میں تھوڑی نظام ہے چیک کرنے کا. اس سے ان سے آتے رہیں ایسا ہی ہم کو ماحول دینا.
ساؤنڈ
تو نماز کے فوراً بعد مائک چل پڑتے ہیں اور لوگ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ فرضوں کے بعد تو یار اعلان کا کچھ رکھنا نہیں چاہیے. کوئی تک نہیں بنتا. بہت تکلیف ہوتی ہوگی نماز پڑھنے والوں کو. ٹھیک ٹھاک تشویش ہوتی ہوگی. مائک بھی ادھر فل ساؤنڈ میں. مائک جو یہ جیسے کہ ہم دعا بھی آہستہ سے کرتے ہیں. یہ تو خالی فیضان مدینہ کی خصوصیت ہو تو باہر کا تو پتہ نہیں دیگر مساجد کا.
کم و بیش ایک ماہ کے دس دن کے ملا کے اسلامی بھائی 5,000-6,000 جو بھی مطلب تعداد ہوتی ہے کم و بیش آدھو آپ کے پاس تو موبائل ہوتا ہے اور موبائل کی بیٹری کی بھی ایک لمٹ ہے. تو فیضان مدینہ مدنی مذاکرہ سننے آئے یا اجارے پہ ہیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس کو موبائل چارج کرنا ہوتا ہے. تو سیڑھیاں اتر کے وضو خانے کے سامنے جو بورڈ لگے ہیں یہاں پر ایک لگی بندی سینکڑوں کی بلا شبہ سینکڑوں کی تعداد میں تعداد بیٹھی ہوتی ہے. اس میں امامے والے بھی ہوتے ہیں دوسرے بھی. لگتا ہے ایسے لگتا ہے ان کا اتکاف ہے یہی پہ بھائی بورڈ کے پاس.
خارجی مسجد
جی
خارجی مسجد بیٹھے ہوتے.
خارجی مسجد نہیں ہے وہ
مسجد
اویلیبل. تو وہاں ہی بیٹھے ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد. مطلب وہ حلقوں میں دکھا نہیں ہے لگے بندے چہرے ہوتے ہیں بیٹھے ہی ہوتے ہیں وہاں
موبائل کے انتظار میں
چارج کرنا ہے اور اس کو پھر کوئی وہیں چارج کر کے وہیں یوز کر رہا ہے جو بھی اس کو کرنا ہے سوشل میڈیا جو بھی کرنا ہے. وہ تو کسی نہیں کے بارے. یہ تربیت اجتماع میں بھی منظر دیکھا ہے کہ وہ یہاں تک کہ راستہ بند ہو جاتا ہے وہ ادھر سامنے مکاتب میں جانے کے لیے. بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو بیٹھی ہوتی ہے. ان کا بھی کوئی حل کیا جائے گا
کیا یہ ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو جیسے جوتوں کے ٹوکن مزاروں پہ دیتے ہیں تو اگر یہ ممکن ہو کہ کوئی ہمارا اجارے کا اس طرح بھائی بیٹھا ہو موبائل دے وہ ٹوکن لے اور ٹوکن دکھا کر وصول کرے. چوری کا یوں شاید اندیشہ کم ہو. اس کا نام ہو شناختی کارڈ کی اس کی کاپی اس کے ساتھ ہو.
بہت اچھا
ہے نا تاکہ دھوکا دے کر نہ لے جائے.
یہ ایک پرانی آپ کی خواہش تھی کہ وہ کپ ہم جو استعمال کرتے ہیں پلاسٹک کے تو پچھلے سال بھی اس پہ ہماری کوشش تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئی. عرفان میں نے ترکیب بنا لی ہے اور اسٹیل والے جو کپ ہیں نا وہ ہمارے آ رہے ہیں انشاءاللہ.
اور جیب میں لے کر وہ جائے یہ رسک تو رہے گا. بیگیج میں ڈال دیں گے اپنے.
اور یہ تو تھال نہیں گیا سبھی ہو گئے نا ہوگا
وہ غلط فہمی میں بھی لے جاؤ. یہاں میرا بچہ چھوٹا تھا کبھی ہوائی جہاز میں سفر گیا تھا نا تو میرے کو یاد پڑتا ہے ہوائی جہاز میں کھانا ملا چمچ ساتھ لے آیا تھا. تو کیا بتا بیچارے کو. اب میں نے پھر وہ چمچ جس طرح بھی پی آئی اے کی دی یا وہ یاد پڑتا ہے میں نے پھر پہنچا ہی دی پی آئی اے میں. اب وہ خدا جانے کا اصل ٹارگیٹ پر پہنچی یا راستے میں کہیں بھٹک گئی کیا کر سکتا ہوں میں. اس کو نہیں پتا ہوتا بچوں کیا پتا کہ چمچ واپس دینے کی ہوتی ہے.
میرا یہ سوال تھا کہ مستشفی کی ذمہ داری ہے میرے پاس. ہمارے یہ جو اعتکاف مجلس ہے ان کا کچھ طے ہے کہ یہ اسلامی بھائیوں کو اعتکاف میں بیٹھاتے ہیں. اب بعض اوقات اس جو ان کے مدنی پھول یا شرائط ہوتی ہیں اس پہ وہ آنے والا معتکف نہیں اتر رہا ہوتا تو اس کا اعتکاف کارڈ نہیں بنایا جاتا. اب وہ اس طرح کے جب معتکف ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے کارڈ نہیں بنے ہوتے پھر وہ جب بعض اوقات اور یہ ہوتے بھی تقریباً 70 سال 75 سال 80 سال کے قریب جو کہ بی پی اور شوگر کے مریض ہوتے ہیں, تو جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں باہر ریفر کرتے ہیں تو نہ کوئی ان کا ہمیں ہلکا ذمہ دار ملتا ہے نہ کوئی ان کا, ایسا افسران حال ہوتا ہے کہ ان کو کس کے ساتھ بھیجیں کیا کریں ان کا. تو ایسے معتکفین کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
پہلے سے تو میرا خیال اب کم ہوئے تو ہوں گے, 50 سال واجبی ہوتا ہے اتنا, وہ 50 سے اوپر زیادہ تر وہ بےچارے ڈاؤن ہونا شروع ہوتے ہیں, بعد 60 سال کے بھی تگڑے ہوتے ہیں, لیکن اب یہ بولیں گے تو یہ سب کو تگڑا بنا دیں گے, ٹرین بھرنے والے خاص کر. اب بھی دیکھو ٹرین میں کیا کیا لاتے ہیں, بچوں کو اٹھا لاتے ہیں, بچے بےچارے نا خود اس قابل ہوتے ہیں کہ سیکھیں, اور باپ کو بولیں گے گھر چلو نیند آتی ہے تو پشی تو یہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہوں.
پاپا ایک تو وہ جو آیا تھا جس کے گردے فیل تھے, پیٹ اس کا بچہ تھا بےچارا لیکن اس کا پیٹ پھول گیا اور وہ جانے کا نام نہیں لے گئے. بھائی آپ مہربانی کرو, یعنی لوگ رشت کر لیتے تھے کہ بھائی اس پہ ترس کھاتے تھے.
کسی نے سمجھایا ہوگا کہ ٹھیک ہو کر آنا, بس پڑھے رہنا ٹھیک ہو جائے گا.
یہ گنبد جو بنا ہے فضان مدینہ میں, اس کو جو میں نا صفائی کرنا چاہتا ہوں اجارے سے ہٹ کے. جو فضان مدینہ میں استعمال کے لیے جو مدنی مذاکرے کے لیے لوگ آتے ہیں پہلے گنبد کو دیکھتے ہیں, اس میں جو ہے نا مٹی ہوتی ہے ویٹھو ہوتی ہے, مہینے میں 2-3 مرتبہ دھوئی تھا شہیدائے تھے, بالکل ایک خوبصورت ساوا طوطا لگتا ہے. آپ جیسے مدنی پھول فرماؤ اور میرا کوئی گیارہ ٹائم نہیں, اس میں کوئی سیلری نہیں, اللہ کی رضا کے لیے
جو دے نہ دے, دے اس کا ہی بھلا جو نہ دے اس کا ہی بھلا.
میری خواہش بابا جان یہ خود مائیں دادا اس کی مہینے میں 3 مرتبہ صفائی ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ
اتنے جوش میں یہ کام کرتے ہیں بابا, بغیر رستے کے بھی شروع ہو گئے تھے تو
مسجد میں ہیں, ویسے خادی میں
زندہ
باد. باپا جان یہ جو نیچے والے کو ایسے لگتا ہے جو ابھی گر رہے, جو اوپر دھلائی کر رہے ان کو لگتا ہے میں صحیح کھڑا ہوں. خادمین کو نگران بھیجے اجارے کے دوران بھی تو اس کی دھلائی کر, وہ بولے گا اپنے لوگوں کو رشتے داروں کو نہیں بھیجتا رہے, میرے کو بھیج رہا ہے کہ میں مرنا ہے. تو میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی خواہش دل کی مراد کر کے اوپر چڑھ رہا ہوں, تو آپ ایسے فرماؤ مدنی پھول بتاؤ جو میں کیا پڑھ کے اوپر چلا جاؤں.
دارالتہ سنت سے ہمیں اجازت ہو جائے کہ یہ کب کب صاف کروا سکتے ہیں؟
ایسا ہے کہ مٹی اڑانے کے لیے پانی تو ضروری نہیں ہے, اس کے جو آتے ہیں نا وہ بجلی کے جو کارپیٹ وغیرہ کی صفائی کرتے جو صفائی کے لیے بقد آتے ہیں دیواروں کے, اس کے کر کے یہ کروا لیجیے. پانی پھر بے تحاشا پانی بہائیں گے, پھر وہ پانی کی نکاسی پھر اپنے مسائل وہ نیچے تشریف لائے گا, لوگوں پہ ہو سکتا ہے کیچڑ بنے, اس سے کروا لیجیے. کبھی واقعی سے ضرورت پڑے کہ بیٹیں وغیرہ بھی پرندوں کی شاید ہوتی ہوں گی تو دھونے کی ضرورت پڑے تو کپڑے سے یا کسی طرح پانی والا کر کے, اور جو بلیچنگ پاؤڈر یا جو بھی اس کے آج کے دور لکوڈ آتے ہیں اس سے اس کی صفائی کیجیے. پائپ مارنا ضروری تو نہیں ہے, رنگ بھی اکھاڑ دے گا پائپ, تو اس کا رنگ کے لیے بھی لاکھوں روپے چاہیے گے. کوئی سسٹم بنا لیں تو, مگر یہ کہ جیسے اپنے دارالفتاء علیہ سنت ارشاد فرمائے اس کی روشنی میں سسٹم بنا لیں.
بابا پیارا جان یہ میری یہی ایک گزارش ہے کہ باہر اگر چپل ہم اتار دیں تو جو لوگ جنہوں کی چپل اوپر پڑی ہوتی ہے تو وہ باتھ روم جاتے ہیں تو کسی کی بھی چپل لے کر چلے جاتے ہیں, تو اگر کسی کو واپسی جانا ہو آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ سفر کرنا پڑتا ہے کہ میری چپل گم ہو گئی چوری ہو گئی, تو اس کی وجہ سے مدنی پھول.
یہ تو آج سے نہیں, میں برسوں سے سمجھاتا آ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, دوسرے کی چپل پہن کر باتھ روم میں نہیں جانا چاہیے جب تک وہ اجازت نہ دیں, اجازت مانگنی بھی نہیں چاہیے, یہ بھی سوال ہے. اور جیسے کہ میں خود اپنی چپل کے لیے میں کوئی اجازت مانگے گا کہ باتھ روم میں پہن کے جاؤں, میں اجازت دوں گا بھی تو بے مروت میں, دل نہیں کرے گا کہ وہ پہن کر جائے, نہیں طبیعت نہیں مانتی, اس لیے سوال بھی نہ کرے, اپنی چپل ہی کی ترکیب رکھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه
مصطفى جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی دل کا طیبہ کچا جس سہانی گھڑی دل کا طیبہ کچا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سا ات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم